कोई भी उत्तर बाहर से कभी नहीं मिल सकते हैं। हर प्रश्न का उत्तर सबकॉन्शियस माइंड में है, बाहर से कभी भी कोई नहीं उत्तर आ सकता है। हाँ, बाहर से अगर कुछ आता है तो वो शायद मदद कर सकता है कि अंदर से उत्तर, जो वास्तविक और रियल उत्तर है, वो अंदर से बाहर आने में। ठीक है,
उत्तर
और उत्तर बहुत शॉर्ट में देंगे क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास।
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮದೇ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಒಳಗಡೆನೆ ಸಿಗೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುವಂತ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಕೆಲವ್ರದೆಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣವ್ರೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮರೆತು ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ನಾಳೆ ಕ್ವಿಜ್ಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವುದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಪೆಲ್ಲ ಕಭಿ ಕಭಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಯೋಗಿ ಕೋ ಕ್ರೋಧ ಕರ್ನಾ ಹೇ ಯಾ ನಹೀ?
ಕ್ರೋಧ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಪೆಹ್ಲೇ ಇಸ್ಕೋ ಸಮಜ್ನಾ ಹೇ. केवल ये कह देना कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न नहीं है. प्रश्न ये है आत्मा का स्वधर्म और स्वरूप क्या है. यदि दोपहर में हमको बहुत क्रोध आता है, किसी ने हमको कुछ कह दिया और हमको बहुत क्रोध आता है, या हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है, यदि वही समय अमृत वेले का होता और हम योग युक्त अवस्था में है और बाबा की यादों में है और वही इवेंट सुबह होता, तो क्या हम क्रोध करते? शायद नहीं. क्यों? क्योंकि तब हम अपनी स्थिति में स्थित है. तो आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित है, जो कि संपूर्ण शांत स्वरूप है, तब कोई क्रोध का सवाल नहीं है. क्रोध है, क्रोध अंधकार है, शांति प्रकाश है. शांति का न होना अर्थात क्रोध. तो क्रोध आ रहा है अर्थात शांति नहीं है, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, अर्थात हम अपनी ही आत्मा से बहुत दूर गए हैं. अंधकार क्यों है? अंधकार से लड़ाई करनी नहीं है, क्रोध से लड़ाई नहीं करनी है. उत्तर है स्व के स्वरूप में स्थित होना है. तो योगी निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, इसके लिए क्रोध वहां कैसे आ सकता है? अगर क्रोध है तो योगी नहीं, अगर शांत है तो फिर क्रोध है ही नहीं. दूसरा, क्रोध को जीतने का उपाय है धैर्य, पेशेंस. बहुत क्रोध आ रहा है, वेट. विदेश में, पाश्चात्य जगत में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, जॉर्ज कुर्जियफ. जॉर्ज कुर्जियफ में अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब मैं 7 साल का छोटा सा बच्चा था और मेरे पिताजी अंतिम सांसें गिन रहे थे ऑन द डेथ बेड, उन्होंने मुझे एक चैप्टर बताया. उन्होंने कहा कि यह पाठ हमेशा याद रखना, और मैंने वो हमेशा याद रखा. वो पाठ ये था कि जब भी तुम्हें क्रोध आए, एक दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर देना. अभी क्रोध आया, आज नहीं करना, अपने मन को समझाना, कल कल. और कल जब होगा, तब कल आपको वो बात इतनी छोटी सी दिखाई देगी जो कि आज इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, कल छोटी हो जाएगी. पोस्टपोन दी एंगर, धीरज, ये सब. ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, परंतु शॉर्ट में क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है. अच्छा, यदि क्रोध हमारा स्वभाव है, क्या आप 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा कंटिन्यूअस क्रोध कर सकते हो क्या? यदि कोई कहते बहुत जरूरी है, करना है, तो 24 आवर्स कोई क्रोध कर सकता है? हाँ, पर 24 आवर्स शांत जरूर रह सकता है. इसका मतलब क्रोध हमारा स्वभाव है ही नहीं. जस्टिफाइड एंगर, एंगर के देर आर 21 टाइप्स ऑफ एंगर्स. उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे. कौन कौन से एंगर होते हैं? मॉरल एंगर, जस्टिफाइड एंगर, बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं एंगर के. तो कई कहते हैं बहुत जरूरी है क्रोध करना, क्रोध नहीं करेंगे तो ये सुधरेगा कैसे, इसको पता है इसको थोड़ा डर रहना चाहिए। तो कभी ऐसी अगर कंडीशन है कि हम इंचार्ज है और हमारे अंदर चार लोग हैं और हमको उन्हें कंट्रोल में रखना है, तो एक चीज जो बाबा ने तो नहीं कही है पर कैसे कर सकते हैं, दिखावा थोड़ा सा क्रोध का, फॉल्स एंगर, सूडो एंगर, वो भी थोड़ा सा नॉट रियल, खाली उनको थोड़ा सा रखने के लिए। तो क्रोध प्रश्न है योगी को करना चाहिए क्या, उत्तर है नो विद कैपिटल एन।
हमें कोई मोह नहीं होता लेकिन दूसरों को हमारे साथ होती है,
दूसरे हमारे साथ मोह होता है। इस पर हमने एक क्लास कराई थी अभी अभी, उसमें बहुत सारी पॉइंट्स गिनाई थी कि दूसरे हमारी तरफ आकर्षित ना हो उसके लिए क्या करें, दूसरे हमारी तरफ आकर्षित ना हो, दूसरे हमको याद ना करे, दूसरे हमसे मोहित ना हो, इसके लिए एक क्लास हुई थी। तो उसमें दो तीन बातें, कुछ ही बातें बताएंगे। एक तो ऐसा हम क्या करें, पहले तो यह देखना है कि वो हमारी तरफ क्यों आकर्षित होते, शायद हम शो ऑफ कर रहे हैं अपनी एबिलिटीज का, अपनी खूबियों का, स्पेशलिटीज का, तब तो उनको पता चल रहा है और फिर हम हमारी तरफ आकर्षित हो रहे एक। दूसरा हो सकता है कि वो हमारी तरफ आकर्षित इसलिए हो रहे हैं कि उनमें कुछ नहीं है और हम में कुछ है कोई गुण, जब भी किसी और में गुण दिखाई देता है तो हम आकर्षित होते हैं उसकी तरफ, इसलिए आकर्षित हो रहे हैं वो, तो शायद उनमें वो नहीं है और हमारे में वो है। हम ऐसा क्या करें कि दूसरे हमारी ओर आकर्षित ना हो, अगर कोई आकर्षित हो ही रहा है तो क्या करना चाहिए, दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले तो नो रिस्पॉन्स, यदि वो हमको, हमको पता है ये जो व्यक्ति है बार बार SMS बार बार मैसेजेस, तो फर्स्ट स्टेप इज नो रिस्पॉन्स। हाँ, माता पिता की बात नहीं चल रही है, ये दूसरा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि दूसरे माता पिता आकर्षित क्यों होंगे, वो तो घर में ही रहते हैं, वो तो उनका तो मोह है। यहां है प्रश्न कि दूसरों का हम में मोह ना हो, माता पिता का है उसमें क्या करे, ऐसा
माता पिता को तो हमारे साथ होती है, हमको भाई को मना सब अच्छा। को नहीं है, पेरेंट्स को है,
ये दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी, हम बाहर की बात कर रहे थे, चलो ये भी है। उनको हमसे मोह ना हो, सबसे पहले तो यदि शुड वी चेंज द क्वेश्चन, माता पिता को क्वेश्चन है ये?
नहीं, माता पिता का नहीं, कोई भी हो, हमको कोई कुछ नहीं होता लेकिन दूसरे,
इसमें थोड़ी कैटेगरी है, अगर माँ बाप की बात आती है तो यहाँ आंसर वुड भी डिफरेंट, आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा, अगर बाहर के लोग हैं तो आंसर अलग हो जाएगा, आंसर अलग होगा थोड़ा, बाहर के लोगों का, बाहर के लोगों के लिए थोड़ा कठोर हो जाएंगे हम, माता पिता के लिए इतना कठोर नहीं हो सकते। हाँ, दोनों बता दो। एक तो बाहर का अगर कोई है, जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत है, सोशल मीडिया पे कुछ भी भेजते रहते हैं, कंटिन्यूअस मैसेजेस भेजते रहेंगे, कुछ तरेंगे कुछ नहीं कुछ नहीं, और फिर कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करने का कोशिश करेंगे, कोई भी किसी भी बात को पकड़ के आपका ये बहुत अच्छा है, आपका वो बहुत अच्छा है, तो इस तरह से। तो फर्स्ट स्टेप इज नो रिस्पॉन्स, नो कनेक्शन, उसके बाद यहां पे यू हैव टू बिकम लिटिल रूड, कठोर। यदि आप यहां रहम दिल बने तो उसका मोह और बढ़ेगा, यहां पे तो विकराल रूप धारण करता करना होता है। यू मे हैव टू ब्लॉक, ब्लॉक द नंबर, ब्लॉक द SMS, ब्लॉक द मैसेजेस, ब्लॉक द ईमेल, सब तरह से, क्योंकि आपने कुछ करने का कोशिश करे तो वो और बढ़ेगा, वो संबंध बहुत बढ़ेगा, और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ब्लॉक कर देना है हर तरह से, जितनी सोशल मीडिया आजकल वो सबसे ज्यादा है, वो ब्लॉक कर देना। दूसरा, उनका हमारे में मोह हो रहा है बार बार, तो हमारा उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो खत्म कर देना है। हम किसी भी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट, क्योंकि उनका मोह हम में इसलिए भी है ताकि उनको लगता है ये हमारे पास आते हैं कुछ कुछ चीजों के लिए, हम इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर वो फाइनेंशियल भी चीज है, हम बाहर की बात कर रहे हैं, अगर कोई फाइनेंशियल है, कोई साधन है, कोई वस्तु है, उनके लिए उस पर कुछ सीखने के लिए उनके पास जाते हैं, दे कैन टेक अनड्यू एडवांटेज। तो फिनिश ऑफ ऑल द डिपेंडेंसी। दूसरा, फिनिश ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेशंस। उनसे हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, सूक्ष्म में केयर प्रेम हम कहते नहीं है परंतु है, और वो व्यक्ति उसी के आधार पर उसका मोह बढ़ाता है, हमसे और ज्यादा मोह रखता है। तो नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिपेंडेंसी, नो रिस्पॉन्स, नो कॉन्टैक्ट, नो रिलेशनशिप। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकमिंग रूड, ताकि उसका कल्याण हो, नहीं तो उसका मोह बढ़ते जाएगा। अगर हम कीप ऑन रेसिप्रोकेटिंग, रिस्पॉन्ड करते रहेंगे हम, तो उसको लगेगा शी और ही इज पॉजिटिव, वो और कॉन्टैक्ट बढ़ाएगा। जबकि हमको पता है ये जो मार्ग है, ये वो सामने वाला व्यक्ति, उसमें भी दो, एक तो ज्ञानी हो सकता है, अज्ञानी हो सकता है। अज्ञानी हो तो उसके साथ संबंध बढ़ाने का कुछ मतलब ही नहीं है, और उसका हम में मोह हो जाए वो तो और खतरनाक है, वो छोड़ेगा नहीं हमको, हम छोड़ देंगे पर वो छोड़ेगा नहीं। दूसरा, अगर ज्ञानी है तो ये श्रीमत के अनुसार ही नहीं है, उसका भी अकल्याण है उसमें। अगर ज्ञानी का हम में मोह हो रहा है तो उसका भी तो अकल्याण हो रहा है साथ साथ, तो वो भी नहीं। तो अगर दूसरा है माता पिता, माता पिता का मोह होता है बच्चे में, परंतु हमें उनको भी ये थोड़ा सा बीच बीच में याद दिलाना है कि हम कुछ समय के लिए यहां है, कुछ समय के बाद चले जाएंगे। लोग जाते ना विदेश चले जाते हैं, पेरेंट्स यहां पर है और बच्चे विदेश में है, तब उनको कहां इतना ये होता है। तो यहां पर भी हमको ये सोचना है कि हम आपके पास बीच बीच में, इसको फिलर्स कहते हैं, कि हम अभी थोड़े समय के लिए यहां है, फिर यहां से हम चले जाएंगे। या अगर बहुत ज्यादा मोह है, बहुत ज्यादा मोह, तो यहां पर भी हमको थोड़ा सा, मतलब जिसको कहेंगे यू हैव टू बिकम लिटिल लेस इमोशनल, अनइमोशनल, क्योंकि बहुत ज्यादा उधर भी इमोशंस इधर भी इमोशंस तो मोह बढ़ते जाएगा। यहां पर भी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का जो मार्ग है, इट्स अ वेरी 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 कठोर मार्ग। उस दिन बहनों की क्लासेस में भी हमने बात कही थी, थ्री इंग्लिश में तीन शब्द है स्पिरिचुअलिटी मार्ग जो है, कट द ब्रिजेस। आर्मी में नियम है, यदि यहां से यहां उनको जाना है, बीच में खाई है, तो एक पुल डालते हैं, पुल डालने के बाद में इधर आने के बाद में वो कट कर देते ताकि भाग के जाने का कोई चांस ना हो, मरेंगे या जीतेंगे। अध्यात्म भी ऐसा है, एक बार उधर से इधर आ गए, उस संसार से, कट द ब्रिजेस, पुल को काट दो, ड्राउन द बोट, जिस नाव में बैठ के उस किनारे से इस किनारे आए हो उस नाव को डुबो दो ताकि उस किनारे में जाने का कोई चांस ना हो, ड्राउन द बोट। थर्ड, थ्रो द लैडर, जिस सीढ़ी पर बैठकर ऊपर चढ़े हो, चढ़कर ऊपर आए हो, ऊपर चढ़ने के बाद थ्रो द लैडर ताकि नीचे आने का कोई चांस ना हो, कट द ब्रिजेस, थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट। कठोर मार्ग है। और उन मां बाप का यदि मोह है, उसमें भी दो, ज्ञानी अज्ञानी। अगर अज्ञानी है तो उनका तो पता ही नहीं उनको क्या कर रहे हैं, अगर ज्ञानी है फिर भी मोह है तो क्या कहेंगे। बोलते हैं ना ज्ञानी माता पिता, अपनी बेटी के लिए एक बीके कुमार चाहिए उनको, बीके मैट्रिमोनी वेबसाइट, अच्छा कुमार, पक्का ज्ञान योग में पक्का वाला। तो यदि किसी का हम में मोह है, हमको वो डिटेक्ट करते आना चाहिए, डायग्नोसिस हो जाना चाहिए, एंड देन कट इट। नेक्स्ट,
ಅಣ್ಣವರು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆನಪಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಸಾಯ್ತಿನ ಬಾವಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು, ಈಗಲೇ ಬೀಳು, ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಯಾಕ
ಮಾತಾಕೋ ಅಪ್ನೆ ಕ್ಯಾಕ ಮಮ್ಮಿ ಕೋ ಸುನಾಯ್ತು.
ಹಮಾರಿ ಮಾತಾಜಿ ದೋ ತೀನ್ ಬಾರ್ ಆಕೆ ಗಯಿ ಮಧುಬನ್ ಬಾಬಾ ಸೇ ಭೀ ಮಿಲಿ.
ತೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಬಹ ಸುಬಹ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಮೃತವೆಲ್ಲ ದೋ ಬಜೆ ಯಾ ತೀನ್ ಬಜೆ ಉಠಕೆ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಬಾವಜೂದ್ ಪಾಂಚ್ ಬಜೆ ಕೋ ಅಗರ್ ನಹಿ ಸೋನಾ ಸೋಯಾ ದಿನ ಮೇ ಫ್ರೆಶ್ ನಹಿ ಲಗ್ತಾ.
ಹರೇಕ್ ಕಿ ದಿನಚರ್ಯಾ ಕೈಸಿ
ಹೈ ವೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಬಾಬಾ ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ನಾ ಸೋನೆ ಕಾ.
ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಾ ತೋ ಅಮೃತ ವೇಲೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಸೋನಾ ನಹಿ ಹೈ. ಅಮೃತ ವೇಲೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಸೋನಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಿ ಕಮಾಯಿ ಚಟ್ ಕರ್ನಾ. ಅಮೃತ ವೇಲೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಸೋನಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಜಿತ್ನಾ ಕುಚ್ ಪಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಪಾಯಿ ವೋ ಸಬ್ ಗವಾ ದೇನಾ. ಅಮೃತ ವೇಲೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಕಾ ಸಮಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತನ್ ಕಾ ಸಮಯ ಹೈ, ಮನನ್ ಕಾ ಸಮಯ ಹೈ, ಅಧ್ಯಯನ್ ಕಾ ಸಮಯ ಹೈ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ಸಾನಿಧ್ಯ ಮೇ ಜಾಕರ್ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ज्ञान के चिंतन से भरपूर करने का समय, चर्चा करने का अगर हो सके तो, अगर ग्रुप है छोटा तो. परंतु सोने का समय नहीं है, पहली बात. दूसरी, कोई लोग अगर दिन भर में टाइम नहीं है तो किसने कहा था दो बजे उठने के लिए? दो बजे नहीं उठना है आपको. दो बजे उठकर कोई कसरत नहीं, वहां पर हट योग और वो सब नहीं करना है यहां पर. वो आपकी दिनचर्या अगर अलाउड नहीं करती. अगर जिनको दोपहर में रेस्ट करने का टाइम है और बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं है, उनके लिए ठीक है. नहीं तो किसने कहा आप यू गेट अप पौने चार बजे या साढ़े तीन बजे उठो. और फिर हाँ, अगर ऐसा लगता है नींद आती है तो गो फॉर अ लॉन्ग वॉक. वॉक में चले जाओ, किसी प्रकृति गार्डन में चले जाओ, पहाड़ जो भी है वहां छत पे चले जाओ लॉन्ग वॉक. तो ये सब में चिंतन करना है. अच्छा, कोई कोई को फिर भी थोड़ा रेस्ट नहीं मिलता है तो सोना नहीं है, लेट जाना है. एक रिक्लाइनिंग चेयर होती है ना, रेस्टिंग चेयर या बेड पर, एंड लिसन क्लास. सोना नहीं है, खाली लेट जाना है थोड़े देर और क्लास चालू कर देना है, कोई भी क्लास ज्ञान योग का, और वो सुनना है. अच्छा, दूसरा, अगर दोपहर में रेस्ट नहीं मिलती है, जिनको रेस्ट मिलती है दोपहर में वो तो बहुत अच्छा है, पर जिनको बिल्कुल ऑफिस में 9 बजे गए तो 6 बजे ही आते हैं, ऐसे भी बहुत सारे हैं, उनको रेस्ट नहीं मिलती है, तो उनको ये सब ऐसा नहीं करना है. उनको मे बी अगर 10 बजे ऑफिस चालू होता है तो एटलीस्ट 15 मिनट शवासन. शवासन पता है ना, लेट जाना और रिलैक्स करना शरीर को. वास्तव में शरीर को नींद नहीं चाहिए, आराम चाहिए. आराम करने का एक मार्ग नींद है. यदि वो आराम नींद के बिना भी प्राप्त हो सके तो नींद की तो जरूरत ही नहीं. फिर शरीर को आराम चाहिए, नॉट स्लीप. स्लीप इज द बेस्ट वे ऑफ रेस्टिंग, वो अलग बात है. योगी और जैसे बहुत सारे होते 4 घंटे सोते हैं, ये सुना है सबने. एक अव्यक्त साकार मुरली, संसार के लोग 8 घंटे सोते हैं, तुम योगी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए, 4. साकार महावाक्य है बाबा के, वंस ओनली वंस ये वाक्य आया है. तो ये डिपेंड करता है, और हरेक का स्लीप साइकिल कितना है, किसी को 6 घंटा चाहिए, किसी को 7 घंटा चाहिए. स्वयं को समझना है, स्वयं के स्लीप साइकिल को, कि कितना घंटा मुझे नींद करनी है. कितना घंटा अगर नींद कम हो गई, क्योंकि नींद अगर कम हो गई तो वर्क में एनर्जी नहीं होगी, दिन भर में नींद आएगी, बहुत सारी थकान महसूस होगी, फ्रेश नहीं महसूस होगा. इसके लिए 2 बजे उठने का पुरुषार्थ नहीं करना है. वो पुरुषार्थ जो करना है, बराबर आपको दिन भर में काम करना है, हार्ड वर्क करना है, ट्रैवलिंग करना है या कुछ करना है, तो चेंज कर देना है, सीधा 4:15 कर दो और पावरफुल योग करो. नेक्स्ट,
साइंटिफिक रीजन कुछ?
साइंटिफिक रीजन एज सच, साइंस तो कहता है 8 घंटा नींद करो, 10 घंटा नींद करो. साइंटिफिक रीजन क्या देंगे उसका, साइंस तो कुछ और ही कहता है, बहुत सारी चीजें कहता है साइंस. स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट. साइंस तो जहां एंड होता है वहां से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है. स्पिरिचुअलिटी के कई सारे कॉन्सेप्ट, साइंस तो बहुत ही छोटा बच्चा है, उसको क्या समझाया, उसने तो अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है क्या होना चाहिए. मे बी इन नियर फ्यूचर दे विल डिस्कवर, बट साइंस तो कहता है कि 8 घंटा अच्छी नींद करनी चाहिए, पावरफुल. आफ्टरनून भी करो, कुछ कुछ कंपनीज में तो नींद के लिए टाइम भी रखा हुआ है ताकि वर्क इफिशियंसी बढ़े. नेक्स्ट,
योग में जब बैठते हैं बहुत पुराने यादें आती हैं, पुराने रिलेटिव्स याद आते हैं, अनवांटेड और बुरे और जो चोरी किया हुआ ऐसा सब
याद है. अभी अभी हमने पवित्रता के पैकेज में एक सुना, स्मरण, यादें, मेमोरीज. पुरानी मेमोरीज रहेगी तो उनको नई मेमोरीज क्रिएट करना, इसके लिए ज्ञान का चिंतन बहुत जरूरी है. अभी आप जैसे यहां घूम रहे और चिंतन कर रहे हैं, वैसा रोज करना है. एवरी डे वन आवर विथ नेचर, प्रकृति के सानिध्य में एटलीस्ट वन आवर एवरी डे जाना है और वहां बैठकर चिंतन करना है ताकि हमारे ज्ञान के संस्कार क्रिएट हो, ज्ञान की मेमोरीज क्रिएट हो. नहीं तो वो पुराना याद आते रहेगा. 10 साल पहले क्या किया था, 20 साल पहले क्या किया था, उसका कोई लेना देना नहीं है, वही याद आते रहता है. बस वही योग. योग तो बस ऐसा ही है, 4 बजे बैठ गए योग को, सब 4:15 कब बजे, 4:15 कब बजाते पता ही नहीं चलता है. वही 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 विचार चालू रहते. न्यू थॉट्स, न्यू मेमोरीज, उसके लिए न्यू नॉलेज चाहिए. नेक्स्ट.
एक माधुरी प्रश्न है, मना ये ज्ञान के आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स घर में उत्पन्न हो गए और रिलेटिव्स भी पूरा दूर हो गए, उनको कारण मालूम नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है?
ऐसे इसलिए होता है कि ज्ञान में आने के बाद हमारे जो मैक्सिमम हिसाब किताब सब चालू हो जाते
हैं. हेच्चिन कन्नडल बर्दिद्रो हेच्चिन लेखाचार शुरू आ गता है अधिक रीति आ
गया. और ये अच्छी बात है कि ये सब हो रहा है क्योंकि जन्म जन्म का बहुत सारा किया हुआ. इसके लिए जो अभ्यास बताया था, माफी मांगना, माफ करना और धन्यवाद देना, ये रोज करो. जो जो आत्माएं हमको तंग करती है, हमारे विरोध में है, उनको इमर्ज करो, किसी को माफ करो, किसी को माफी मांगो किसी से, ये डेली करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स. तो वो जो भी विरोधी आत्माएं हैं सारी सहयोगी बन जाएंगे. उसमें हमने चौथा भी एक ऐड किया था, उन आत्माओं को इमर्ज करो जिनसे अभी हिसाब किताब चालू ही नहीं हुआ है, उनको भी पहले इमर्ज करो तो उनको भी सकाश. तो ये कार्य से ये जो हिसाब किताब है धीरे धीरे कम हो जाएंगे. और आ रहे हो रहे तो अच्छा है, चुकतू हो रहा है ना, बोझ कम हो रहा है. बोझ जो है जन्म जन्म का वो कम हो रहा है, करने दो विरोध. परंतु हमको न्यू फ्रेश बॉन्डेज क्रिएट नहीं करना है. वो उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, मतलब नेक्स्ट बॉन्डेज क्रिएट कर रहे. न्यूट्रलाइज ऑल दी बॉन्डेजेस, ऑल दी कार्मिक अकाउंट्स. नेक्स्ट
प्रश्न केळिदवरिगे उत्तर अर्थ आगिदेया? नेक्स्ट वोल्केनिक योग और टाइम मैनेजमेंट बारे में पूछे हैं.
क्या क्या? वोल्केनिक योग और
टाइम मैनेजमेंट.
वोल्केनिक योग तो हमने जो परमधाम आज सुबह जो कराया था वो वोल्केनिक योग का ही है. वोल्केनिक योग अर्थात परमधाम में बीज रूप स्थिति शिव बाबा के साथ, वो बिंदु मैं बिंदु, वो वोल्केनिक योग है. और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा विषय है.
प्रश्न है,
टाइम बताना है, टाइम मैनेजमेंट
थोड़ा सा बता दीजिए.
दो चीजें बताता हूं, वन इज टाइम बॉक्सिंग एंड टाइम बफर. एक है टाइम बॉक्सिंग. टाइम बॉक्सिंग मतलब सुबह फिक्स कर देना कितने से कितने मिनट में क्या क्या करना है. जैसे 7 to 8 मुरली, 7 to 8:30 मुरली प्लस ट्रैवलिंग, फिर 9 o'clock to 10 o'clock ट्रैवलिंग टू ऑफिस जो भी है, फिर 10 o'clock to 5 o'clock ऑफिस. मतलब टाइम हर चीज का डिवाइड कर रहे, दिस इज टाइम बॉक्सिंग. ये कर रहे मुरली रीडिंग 1/2 hour, भोजन बना रहे 2 hours, भोजन खाना 1 hour, पूरा दिन भर का प्लानिंग. सुबह अमृत वेले के बाद कितना, नहीं तो ऐसा नहीं, जो काम बिल्कुल फालतू है उसको बहुत 2 घंटा दे दिया और जो इंपॉर्टेंट काम था वही रह गया. ये नहीं होना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट मतलब हम अपने टाइम के वैल्यू को समझे. व्यर्थ में कोई आ गया उसके साथ बैठ के 2 घंटा ऐसी बातें कर रहे, गॉसिप्स, किसने क्या किया, वही 2 घंटा चला गया और बाद में फिर मुरली पढ़ने के लिए टाइम नहीं है. तो टाइम बॉक्सिंग अर्थात फिक्स करके रखना है अपना टाइमिंग, कि दूसरों को इतना अधिकार ना हो कि कोई भी आए और हमारा टाइम वेस्ट कर दे. टाइम बफर करना है, बफरिंग कहते हैं, टाइम बॉक्सिंग सॉरी. दूसरा होता है टाइम बफरिंग. ऐसे तो बहुत बड़ा, इस पर भी हमने कभी क्लास एक बार हुआ था, दो दिन चला था वो, तो टाइम बफरिंग अर्थात अभी हमने एक टाइम फिक्स कर लिया है कि हमको इधर क्लास में 7 से 8 बजे तक क्लास है, तो हम थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा रखे, उसको कहते हैं टाइम बफरिंग, थोड़ा सा, जैसे ऑफिस से 10 o'clock to 5 o'clock ऑफिस, बट हो सकता है कभी ज्यादा काम करना पड़े तो एक्स्ट्रा आप ले लो, 5 की जगह आप कर दो उसको 5:30, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो ट्रैवलिंग में थोड़ा ज्यादा समय लग गया, एक ये। दूसरा है, थर्ड इज कैलेंडर, अपने कमरे में कैलेंडर रखना है। फोर्थ इज वॉच, वॉच सामने हो अपने टेबल पर, हाँ हाथ में रखी है कुमार ने, वेरी गुड, तो वॉच रखी हो, कैलेंडर रखा हो, फिर प्लानर, मोबाइल में ऐप आता है प्लानर, प्लानर मतलब प्लान करके रखो पूरा, उसमें लिख के रखो कंप्लीट, वहां जैसे ये कहते हैं कैलेंडर है, 4 तारीख को इधर जाना है, 3 तारीख को यहां जाना है, 5 तारीख को ये है, प्लानर। फिर एक ऑर्गेनाइजर होता है, ये सब एप्स है अवेलेबल ऑन मोबाइल फोन, प्लानर, ऑर्गेनाइजर, कैलेंडर, इन सबको आप यूज कर सकते हो। फिर होता है कि टाइम वेस्टर्स, टाइम वेस्टर्स की लिस्ट निकालनी है, कौन कौन सी चीजें है जिसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है डेली, सबसे मेरे टॉप मोस्ट टाइम वेस्टर्स क्या क्या है, टॉक्स, व्हाट्सएप, मोबाइल, क्या है, व्हाट इज माय टाइम वेस्टर, उसकी एक लिस्ट निकालनी है। इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करना है। नेक्स्ट,
स्टूडेंट होने के नाते पैशन है एजुकेशन और करियर का, लेकिन मैं बाबा का जो टीचिंग्स है, टीचिंग ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्य को लाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मुझे पहले कभी वैराग्य का अनुभव नहीं है, वो वैराग्य या डिटैचमेंट कैसे लाऊं?
सी, वैराग्य और डिटैचमेंट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो जॉब है या जो काम है उसको छोड़ दे। सबसे पहली चीज तो जो भी हम स्टडी कर रहे हैं या करियर जो भी है, वो अगर ये समझे कि ये बाबा के लिए किया जा रहा है या इससे आगे चलकर बाबा की सेवा होगी, तो उसमें अगर हम पैशनेट भी है तो भी चलेगा, क्योंकि हम वो कर रहे हैं। जैसे मेरा अपना उदाहरण है, जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए तो हमारे मन में इच्छा नहीं थी कि मैं ये करूं पोस्ट ग्रेजुएशन, क्यों करना है, सबली पहली बात तो, परंतु एक मैं वहां पढ़ाई कर रहा था, एक बहन जी ने मुझे कहा था, एक दिन आपके इसी लौकिक से अलौकिक प्रत्यक्ष होगा, जो लौकिक पढ़ाई है उससे अलौकिक प्रत्यक्ष होगा, तो आप उसको लौकिक पढ़ाई समझो ही नहीं। सबसे पहले थिंक एज इफ कि ये सेवा से मेरे में जो गुण आएंगे उससे यज्ञ की सेवा फ्यूचर में होगी, या फिर वो एकदम ही ऐसा करियर है कि जिसका यज्ञ से कोई ज्यादा संबंध नहीं है, पर उसमें से जो भी धन या पैसे कमाई करेंगे उससे हम यज्ञ की सेवा करेंगे। ये एक भाव हो निरंतर कि मैं ये जो कर रहा हूं यज्ञ के लिए कर रहा हूं, बाबा के लिए कर रहा हूं, ये जो पढ़ाई है, कई लोग आईएएस की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते, मैनी कुमार, बहुत सारे युद्ध बीके, अभी एक तरफ वैराग देह सहित देह की दुनिया को भूल जाओ, अब दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स में क्या चालू है, दिस इज कॉन्ट्रास्ट, ये कहता है सब भूलो, वो कहता है सब याद रखो, व्हाट टू डू। तो स्पिरिचुअलाइज ऑल द मटेरियल थिंग्स, उसको स्पिरिचुअलाइज कर देना है कि कैसे इससे बाबा की सेवा होगी। अब दूसरी रही बात वैराग, अभी वैराग और ये सब चीजें तो अल्टीमेटली दिस इज नेसेसरी, ये सब जरूरी है, परंतु मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी कुमार आते हैं और वो जो कहते हैं हमको पढ़ाई कर रहे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, आई टेल देम फॉर यू स्पिरिचुअलिटी इज ओनली 2 थिंग्स, सुबह का अमृत वेला करो 4 से 5, और 1 घंटा अगर सेंटर नहीं जाते तो कमरे में ही बैठकर मुरली पढ़ो, दैट्स इट, फिनिश्ड, दिस इज योर स्पिरिचुअलिटी, बाकी सारा टाइम डिवोट टू योर स्टडीज, बाकी सारा टाइम फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि वो स्टडीज ऐसी है कि बहुत हार्डवर्क चाहिए, बहुत हार्डवर्क चाहिए, बहुत कॉन्सेंट्रेशन, बहुत डिटर्मिनेशन। आई माई सेल्फ आई वर्क फॉर 18 आवर्स एवरी डे. जब मुंबई में था बीएसएस एमजी हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मुझे वापस हॉस्पिटल में जाना है. सो आई वर्कड आफ्टर, वो तो पहला दूसरा, पर ऑलमोस्ट सुबह से लेकर रात तक, डे एंड नाइट, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग. ये डिपार्टमेंट में जाओ, उधर भी जाओ, इधर भी जाओ, डायलिसिस में जाओ, कार्डियो में जाओ, कैथलैब में जाओ, कार्डियक ओटी में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, डायबिटोलॉजिस्ट के पास बैठो, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास बैठो, ऑर्थोपेडिक्स में जाओ, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है. बट स्ट्रांग डिटर्मिनेशन. और जबकि मुझे पता था कि ये सारा तो लौकिक है एक रीति से, इसका वैराग से क्या संबंध है. परंतु व्हेन ड्यूटी कॉल्स, दैट इज द हाईएस्ट कॉल. तो व्हेन यू आर स्टडिंग, परस्यूइंग सम करियर, फॉर यू स्पिरिचुअलिटी कंसिस्ट ऑफ अमृतवेला मुरली, दैट्स इट, नो सेवा. सेवा में अगर चले गए तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी. सेवा करनी है, बट फर्स्ट फिनिश द स्टडीज एंड देन सेवा. नेक्स्ट, जाओ, परंतु वो ऐसी स्टडीज हो कि जिससे बाबा की फ्यूचर में सेवा हो. ऐसी स्टडीज ना हो कि जिससे बाबा की सेवा का कोई संबंध नहीं है. इट्स प्योरली आउट एंड आउट वर्ल्डली. इस तरह की सर्विस जो होगी ना, उसमें आई डोंट एडवाइस.
इस जीवन में जो भी समस्याएं आएंगे उनको कैसे पता करें, ये पास्ट कर्मों का या अभी का है?
क्या करना है, जो है उसको फेस करो. अभी का है, पूर्व जन्म का है, कोई कोई अभी रहने दो. अच्छा, यू गेट टू नो, अभी पता चल गया, ये पिछले जन्म की, दिस इज योर 54th बर्थ का समस्या है. अब क्या, नेक्स्ट व्हाट? 54th बर्थ की समस्या है. 54th बर्थ में एक बार बहुत बड़ा पाप किया था, ठीक है, उसका सजा ये जन्म में है. नेक्स्ट व्हाट? अभ्यास एक ही, आत्माओं को इमर्ज करो, माफ करो, माफी मांगो, फिनिश. नेक्स्ट,
सेलिबसी का मेडिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे.
सेलिबसी का मेडिकल एडवांटेज, सेलिबसी का मेडिकल एडवांटेज बहुत सारे हैं. आपको एक किताब का नाम देता हूँ, वो किताब लिख लो.
पुस्तक बरकुले पर ब्रह्मचर्य दो.
ब्रह्मचर्य बाय स्वामी शिवानंद, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऋषिकेश. सारे कुमार, सारी कुमारिया, सबको ये किताब पढ़नी है. इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश में ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है. जस्ट टाइप ऑन द गूगल ब्रह्मचर्य बाय स्वामी शिवानंद, सीधा बुक आ जाएगी पूरी, HTML फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, ऑल फ्री अवेलेबल. स्वामी शिवानंद ऋषिकेश, डिवाइन लाइफ सोसाइटी. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन ब्रह्मचर्य एवर टिल नाउ. फर्स्ट बुक. सेकेंड, जगदीश भाई, ब्रह्मा कुमारी की किताब ब्रह्मचर्य, सेकेंड बुक. थर्ड बुक, ब्रह्मचर्य बाय स्वामी शिवानंद, महाराष्ट्र वरुड़, बट दैट इज नॉट अवेलेबल नाउ डेज. बुक वो मिलती नहीं है, मराठी में है वो, हिंदी में पता नहीं ट्रांसलेट है कि नहीं. तो दीज आर द टू थ्री बुक्स. एक और एक किताब है, नहीं, दैट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन ब्रह्मचर्य. तो मेन तो एक ही किताब है, वो छोटी सी किताब है, बट मस्ट फॉर ऑल कुमार, ऑल कुमारीज, स्पेशली फॉर कुमार. नेक्स्ट, उसमें सब दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं.
सो नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषार्थ का ग्राफ को सदा आगे बढ़ा के रखने के लिए इंटॉक्सिकेशन को कैसे रखें?
इंटॉक्सिकेशन को रखने के लिए सबसे पहले एक ग्रुप तैयार करना पड़ेगा पुरुषार्थ का. अगर कुमार है तो दो तीन कुमार का एक ग्रुप तैयार करो. रात में रोज मिलना है और ज्ञान की चर्चा करनी है. कुमारिया है तो रात में दो तीन कुमारिया बैठे मिले. सेंटर पर है तो सेंटर में सोने से पहले 9 to 9:30 या 9:30 to 10 o'clock बैठना, दो तीन लोग बैठ के ज्ञान की चर्चा करनी है. कुमार करे, अगर कुमारिया बाहर रहती है तो बाहर करे, अगर कोई भी नहीं है तो फोन पे ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं. तो रोज ज्ञान का मनन, चिंतन एंड डिस्कशन होना चाहिए. जो साकार मुरली आज सुबह चली, उसमें व्हाट आर द इंटॉक्सिकेटिंग पॉइंट्स, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने और क्या कहा. आज कहा ना वरदान में लास्ट लाइन, अनुभव को बढ़ाओ, अनुभव को बढ़ाओ. कैसे बढ़ाओ अनुभव को, क्या करें हम, उसका चिंतन करना है, छोड़ नहीं देना है उसको. एक पॉइंट पकड़ना, उसका विस्तार करना, ये बाबा ने क्यों कहा. तो जब बुद्धि में ज्ञान होगा तो ही इंटॉक्सिकेशन होगा. बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है तो इंटॉक्सिकेशन नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल. फिर ऐसे ही सब साधारण साधारण चल रहा है. नेक्स्ट.
बाबा कहते हैं आप में 84 जन्मों का संस्कार रिकॉर्डेड है, इसका मतलब दोनों बुराई और अच्छाई रिकॉर्डेड पहले से ही है, ऐसे क्यों है?
ये ड्रामा अनादि है, अविनाशी है, ये ड्रामा बदली नहीं हो सकता. इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर आत्मा में संस्कार है. ये डायरेक्टर की इच्छा, अब क्या करें? डायरेक्टर को ड्रामा ही ऐसा बनाना था कि ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि सब आत्माओं को, ये तो बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, 5000 साल का ही क्यों है, 5100 वर्ष का क्यों नहीं है, 6000 वर्ष का क्यों नहीं है, 10000 का क्यों नहीं है, सब आत्माएं सतयुग, वाई ओनली 2500 ईयर, वाई नॉट 4000 ईयर्स एंड देन 1000 कलयुग एंड द्वापर. क्यों आत्माएं नीचे से ऊपर आती है, ऊपर ही क्यों नहीं रहती हमेशा के लिए, आने की जरूरत क्या है, इतना दुख है. अच्छा सतयुग ही 12 पूरा 5000 साल सतयुग ही चलना चाहिए, क्यों सत कलयुग आ रहा है, क्यों द्वापर आ रहा है? अच्छा भगवान एक ही समय क्यों आते हैं, बार बार आना चाहिए, सतयुग में भी आ जाए, द्वापर में भी आ जाए, कलयुग में भी आ जाए. आत्मा में सब संस्कार है, ये खेल है, ये लीला है. भक्ति में इसको लीला कहा जाते हैं, लीला कहा जाता है. ये लीला बनी हुई है कि जिसमें हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है. तो अगर ऐसा, इसमें ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई एक मूवी देखने गए और उस मूवी में सब अच्छा ही चल रहा है लास्ट तक, ऑल फ्रेंडशिप, तो क्या मजा आएगा? कौन देखेगा मूवी, कौन देखेगा ऐसी मूवी? वो मूवी में हीरो हीरोइन शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे भी बच्चे हैं, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी हुई, उनके बच्चे हुए, वो बड़े हुए, शादी हुई, फिर बच्चे हुए और एंड. ये मूवी तो सुपर डुपर हिट मूवी है. जितनी मूवी सुपर डुपर होगी उसमें विलन होगा एक, उसकी एंट्री होगी एक, वो एंट्री होनी चाहिए पावरफुल एंट्री, और जहां लगे कि सब अच्छा हो रहा है ही विल कम इन बिटवीन और सब बिगाड़ देगा. और फिर चैलेंजेस ये होगा ना, तब कई ब्लॉकबस्टर होती है मूवी. ऐसे थोड़ी ना ब्लॉकबस्टर हो जाती है, ऐसे थोड़ी ना उसके क्रिटिकल रिव्यूज बहुत सारे 5+ ऐसे थोड़ी मिलते हैं किसी मूवी को. और ये मूवी तो 5000 इयर्स की मूवी है. इस मूवी का नाम ही है खूने ना है खेल, मूवी का नाम ही है. और रावण बराबर एंट्री करता है बीच में, और उसका एंट्री होना ही सबसे अच्छा है. अगर रामायण, रामायण में रावण होता ही नहीं, ठीक है, या कहीं कहीं होती नहीं. राम का जन्म हुआ, राम बड़ा हुआ, फिर उधर गया, फिर सीता से विवाह हुआ, फिर राम वापस आया और राज्य किया लास्ट तक, टिल एंड, और एक दिन शरीर छोड़ के चला गया, तो रामायण बनती क्या? रामायण, रामायण के लिए रावण इज नेसेसरी. रामायण के लिए विलन चाहिए, सारे राक्षस चाहिए, सब चाहिए, मंथरा चाहिए, कैकेयी चाहिए, देन रामायण बनता है. तो ये इसमें अच्छे बुरे संस्कार वाले आत्माएं चाहिए, अच्छा भी रहेगा बुरा भी रहेगा सब रहेगा. ये खेल है, ये नहीं कह सकते ये क्यों है वो क्यों नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता. नेक्स्ट.
किसी को हाइट्स का और सी वाटर का फियर है, इसको ज्ञान और इसे कैसे रिमूव करें?
फियर्स बहुत सारे प्रकार के हैं, इन्यूमरेबल फियर्स, इनको फोबियास कहा जाता है. क्लॉस्ट्रोफोबिया से लेकर तो बहुत सारे फियर्स है. फियर्स पर हमने एक क्लास कराई थी, कागज का शेर, कागज नहीं, कागज का शेर नहीं, क्या था वो, कागज का शेर, हाँ कागज का ही शेर यही था, हाँ कागज का शेर. उसमें टाइप्स ऑफ फियर गिनाए हैं, वो आपको मिल जाएंगी कहीं तो क्लास, वो जो सुबह फोन नंबर वो जो बताया ना ब्लॉग वगैरह उसमें होगी. हाँ वाइट, हाँ अच्छा आज ही चेक किया. तो उसमें डीप रूटेड फियर्स कौन कौन से हैं और उनसे कैसे मुक्त हो, फियर्स के कारण क्या क्या है, फोबियास कैसे कैसे आते हैं, क्या कारण है फोबियास के और कैसे मुक्त हो फोबियास के. उदाहरण एक छोटा सा दे रहा हूं, जैसे एक व्यक्ति है जो बहुत दारू पीता है, ठीक है, और दारू पीने के बाद उसको सांप ही सांप दिखते हैं सब जगह, सांप सांप सांप, वो डरता है उन सांपों से. तो वो लोगों को कहता है सब जगह सांप ही सांप है, लोग कहते हैं अरे वो सब झूठे हैं सांप, पर वो थोड़ी ना मानेगा, उसके लिए तो दे आर रियल, वो जो सांप है। तो वो एक दिन क्या करता है, एक पिंजड़ा लेता है और पिंजड़े में एक मुंगूस डालता है। मुंगूस पता है, नेवला क्या कहते हैं उसको, मुंगूस, वो डाल के घूमता है। तो लोग पूछते हैं ये पिंजड़ा क्या है, वो कहता है ये पिंजड़े में मुंगूस है। तो लोग कहते हैं मुंगूस किस लिए, वो कहता है वो जो सांप दिखते हैं ना, मुंगूस खाता है ना सांप को, उनके लिए। तो लोग कहते हैं अरे वो सांप झूठे है, वो कहता है ये नेवला ये मुंगूस भी झूठा है। एक फियर है उसको मारने के लिए, एक नया इमेजिनरी, एक इमेजिनेशन को काउंटर करने के लिए नया इमेजिनेशन क्रिएट करना। तो ये जितने भय है उसको बहुत सारी विधि है। उस क्लास में हमने बहुत सारी अबाउट 7-8 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्करिंग फियर। एक होता है फेस करना फियर को, जिससे फियर, दूसरा इमेजिनेशन, ऐसे अलग 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 विधि है। तो वो कागज का शेर एक क्लास है जो पांडव भवन में हुई थी, मेडिटेशन हॉल में, वो आप सुन सकते हो। नेक्स्ट।
बाबा कहते हैं सफलता या असफलता आपके हाथ में ही है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो जैसे हम सोचते हैं ऐसा कर्म या सफलता ना मिले तो खुद को दोषी समझना गलत है क्या?
खुद को दोषी तो नहीं समझना है, परंतु अपनी चेकिंग करनी है कि क्यों असफलता हुई। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती, दीवारों पर 100 बार पिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस बनता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसी बहुत एक सुंदर पोयम है, कईयों ने सुनी होगी। तो कोशिश करते रहना है, ट्राई कंटिन्यू मेकिंग एफर्ट्स। कहां गलती हुई है, क्यों सफलता नहीं मिली है, क्या कारण है, व्हाट आर द लूप होल्स, व्हाट आर द मिस्टेक्स। जितनी बार प्रयत्न करते जाना है प्रयत्न। अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। हमारी महानता इसमें नहीं है कि हम गिर रहे, बट जितनी बार गिरेंगे उतनी बार फिर से उठना। गिरे अब उठो वापस, गिरे फिर से उठो वापस। तो असफलता हुई है, कारण तो होगा ना, कुछ तो कारण होगा, कुछ होगा। एग्जाम्स में मार्क्स कम आए, शायद स्टडी बराबर नहीं की होगी, शायद टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होगा, शायद जितना डिवोशन डेडिकेशन चाहिए था उस पढ़ाई के लिए उतना नहीं होगा। अभी अभी एक हमको फोन आया था एक बहन का, वो कह रही थी कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई हो, कुछ योग का प्रयोग बता दो जिससे अच्छे मार्क्स मिल जाए। हमने कहा बिल्कुल नहीं
कहते ना शिव बाबा को याद नहीं
वो तो था, परंतु हमको पता था वो उत्तर राइट है। तो असफलता चुनौती है, चैलेंज, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकी सिंधु में गोताखोर जा जाकर लगाता है, बार बार खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नेक्स्ट।
बस रिपीटेटिव है और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं आपने क्लास में कवर किया है, प्लीज इनको जाके फिर से नोट्स पढ़नी है। कल वैसे तो सेम टॉपिक्स जो कवर किए उसके बारे में क्विज रहेगा, दीदी प्राइज भी अनाउंस किए हैं तो तैयारी करना पड़ेगा, तो उनको पढ़ना पड़ेगा।
वो कब है?
कल।
अच्छा, हमारे जाने की बात, ठीक है ठीक है।